आप में से जो जप कर रहे हैं, 5 मिनट जप बंद कर दीजिए, 5-10 मिनट। थोड़ा बहुत जप के महत्व पर बोलना चाहते हैं ताकि जप करने से पहले हम लोग उसको जान लें और कैसे जप करना चाहिए, जप को कैसे अच्छा करना चाहिए। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वहाँ तक? पहले के लोगों में बहुत शक्ति होती थी, जब वो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे तो हजारों ऋषि मुनि बैठे थे, पता नहीं कैसे सुन रहे थे। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे या सुत गोस्वामी बोलते हैं तो हजारों ऋषि मुनि बैठे थे नैमिषारण्य में। आज आप लोग भी ऋषि मुनि हो गए हो ना, थोड़े दिन के, एक दिन के लिए वृक्षों के नीचे बैठे हैं। बात थोड़ा बाद में कर, तो आज आप लोगों को भी ऋषि मुनि बनने का अवसर मिला है। हाँ, कोई थोड़े से ऋषि मुनि पैंट में भी हैं, वो अलग बात है, लेकिन थोड़े आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये स्थान। अभी हम लोग भगवान के नाम का जप करना प्रारंभ करेंगे। भगवान के नाम के जप करने की विधि हर धर्म में दी गई है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो भगवान के नामों के उच्चारण के लिए नहीं कहता। तो इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए कि केवल इस्कॉन में या हिंदुइज्म में हम लोग जप करते हैं। सब जगह जप करने के लिए कहा गया है, चाहे वो बुद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, इस्लाम हो, या फिर क्रिश्चियन धर्म हो। हिंदू धर्म में तो है ही, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में तो है ही। तो इसीलिए ये जप करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जप के द्वारा हमें हैं हमारा, जैसे आप लोग फ़ोन लगाते हैं ना किसी से बात करने के लिए, तो नंबर घुमाते हैं और अचानक कनेक्शन हो जाता है, वो आदमी कहीं भी हो, अमेरिका में, लंदन में, आप आराम से बात करते हैं। इसी तरह भगवान इस समय कहीं भी हों, गोलोक में या वैकुंठ में या किसी और ब्रह्मांड में, कहीं पर भी हों, जैसे ही हम लोग फ़ोन लगाते हैं, ये हमारा फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर क्या है हमारा?
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
जब हम ये फ़ोन नंबर घुमाते हैं तो भगवान जहाँ भी होते हैं हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले जप करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, जैसे अभी अभी हम लोगों ने शिक्षाष्टकम कहा, तो ये प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि हे भगवान, हमें सही भाव में लेकर आइए ताकि हम भगवान के नाम का उच्चारण अच्छे भाव में और श्रद्धा से, प्रेम से कर सकें। तो इसलिए सबसे पहले प्रार्थना की जाती है। और अभी भी जप शुरू करने के पहले हम लोग जब जप प्रारंभ करते हैं उसके पहले प्रार्थना करते हैं। तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए जप के पहले? आचार्यों से, प्रभुपाद से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतनी शक्ति दें कि हम भगवान के नाम का उच्चारण कर सकें, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने के लिए अधिकार चाहिए। बिना अधिकार के हम लोग जप नहीं कर सकते, और वो अधिकार हमें आचार्य प्रदान करते हैं, गुरु प्रदान करते हैं। जब तक अधिकार नहीं हो तब तक जप अगर कोई कर भी लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत होगा। भागवत में कहा गया है कि अगर भगवान का नाम कोई मजाक में भी ले लेता है, जैसे हम लोग जब सड़क पर कहीं जाते हैं तो हमें देखकर लोग कहते हैं, देखो हरे कृष्णा वाले आ गए, बस इतना ही, हरे कृष्णा उन्होंने कह दिया तो भी लाभ मिलता है। मजाक में कह दिया, ऐसे ही अनजाने में कह दिया, भय से कह दिया, तो भी लाभ मिलता है। तो आप सोचिए, अगर कोई अनजाने में कहे, मजाक में कहे, भय से कहे, और अगर कोई प्रेम से कहे तो कितना लाभ मिलेगा? अगर भय से मिल जाता है, मजाक में मिल जाता है, तो जब हम प्रेम से भगवान का नाम लेंगे तो कितना आनंद आएगा, भगवान कितना लाभ देंगे। तो इसीलिए हमें जप अभी प्रेम से करना चाहिए। तो प्रार्थना करनी चाहिए गुरु से कि हमें अधिकार दें, हमें शक्ति दें, कि हम भगवान का नाम ले सकें, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। छह गोस्वामी जब वृंदावन में रहा करते थे तो वे लोग संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक मतलब जब जप करते थे तो संख्या से करते थे। कभी कभी लोग पूछते हैं कि जप करने में ये संख्या की क्या आवश्यकता है, क्यों 16 माला करना चाहिए, क्यों हम लोग कहते इतना कीजिए इतना कीजिए। भगवान का नाम है, आप कैसे भी लीजिए, उसमें नियम क्यों लगाते हैं कि 16 माला करना है 20 माला करना है। तो नियम इसलिए है कि हम लोग सब बीमार हैं, जब कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि एक गोली सुबह लेना, एक गोली दोपहर को और एक शाम को, इतने दिन लोगे ठीक हो जाओगे। ऐसे ही हमें सब बीमारी क्या है, हमारी बीमारी क्या है कोई बताएंगे?
हाँ,
भवरोग। भवरोग के लक्षण क्या है? भवरोग किसे कहते हैं? काम क्रोध लोभ और
अज्ञानता,
अज्ञान है,
जन्म मृत्यु,
हाँ
जन्म मृत्यु,
अविद्या है, जन्म मृत्यु है, बार बार जन्म लेना पड़ता है ना। किसको अच्छा लगता है बार बार जन्म लेना? किसी को नहीं। माता जी को अच्छा लगता है कहा उन्होंने?
नहीं, नहीं।
किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत कष्ट है जन्म लेने में, हमें पता नहीं, हम भूल चुके हैं वो कष्ट। भागवत में बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो क्या क्या उसको कष्ट होता है सारा दिया गया है, पूरा भागवत में। पहले महीने में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, कितना कष्ट। इतना ही नहीं, ये तो केवल बाहरी, वो क्या सोचता है वो भी भागवत में दिया गया। ऐसा लिखा है कि उसको अपने पिछले 100 जन्म के किए गए पाप याद आते हैं और पागल हो जाता है। आप सोचो, आप लोगों को अगर केवल एक जन्म का, बाकी तो भूल जाइए, 100 जन्म तो भूल जाइए, केवल पिछले जन्म में जो आपने पाप किए थे वो याद आ जाए तो आप खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, कितना अच्छा था, मैंने कितना प्रेम से हत्या की थी, काश एक बार और कर सकूं, ऐसा होगा। और जब 100 जन्म के पाप याद आएंगे कि 100 जन्मों में मैंने क्या क्या किया है और उसका कष्ट भी क्या होने वाला है, तब क्या होगा। दरअसल हम लोग जो गलत काम करते हैं, जैसे जप नहीं करते हैं या अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, ये किस लिए करते हैं? हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा। आदमी जब भी गलत काम करता है यही सोच के करता है कि कोई देख नहीं रहा, है ना। समझिए कोई चोर है, वो चोरी करने जाए और उसको पता हो कि सारी जगह कैमरे लगे हुए हैं, एक ही रूम में 8-10 कैमरे लगे हैं, तो चोरी नहीं करेगा, कैसे करेगा, उसको मालूम है मेरी फ़ोटो खींच रही है, पकड़ा जाऊंगा। आप देखते हैं ना आजकल बहुत जगह ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, कोई ATM में चोरी करने आए तो उनकी फ़ोटो खींच गई, बाद में पकड़े गए। तो जिसको डर है कि अरे मेरी फ़ोटो खींच रही है, सब देख रहे हैं, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, है ना। ज़्यादातर लोग सबके सामने बड़ा अच्छा काम करते हैं, है ना। जब 10 लोगों के सामने हो तो बड़ा अच्छा, अकेले हो इसीलिए व्यक्ति का चरित्र वो अकेले में कैसे कार्य करता है उससे जाना जाता है, सबके सामने नहीं। सबके सामने तो सब बहुत अच्छे रहते हैं, सूट वूट टाई वाई लगा के एकदम बड़े, पीछे क्या करते हैं पता नहीं। तो इसीलिए अगर हमें भी पता हो कि हमारे सामने भी कैमरे लगे हैं तो हम लोग अधर्म करेंगे। समझिए आपकी इच्छा किसी की हत्या करने की हो रही है बहुत, तो व्यक्ति जब हत्या करता है बहुत सोच के करता है, कोई देखे नहीं, कहीं किसी को पता नहीं चले, चुपचाप जाकर। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि हमारे पास ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ कैमरे नहीं लगे, भागवत में लिखा है, भागवत के 6 स्कंद में, कि भगवान ने 13 कैमरे लगा रखे हैं सारी दुनिया में, केवल 13 कैमरे, ज़्यादा नहीं, और वो सब देखते हैं। जैसे पहला कैमरा है पृथ्वी, जिस पर आप बैठे हुए हैं, छोटी नहीं है ना, एक ही कैमरा बहुत है ये पृथ्वी एक कैमरा है, भगवान उसको साक्षी कहा गया है, भागवत में साक्षी कहा गया है, तो ये एक साक्षी है। आप कुछ भी करोगे तो पृथ्वी पे ही करोगे ना, ये भगवान का एक कैमरा है। आकाश एक कैमरा है, जल एक कैमरा है, वायु एक कैमरा है, आप जहाँ भी पाप करोगे इन्हीं जगह पे करोगे ना, या आकाश में उड़ के करोगे, हवा में करोगे, जल में करोगे, पृथ्वी पे करोगे, जहाँ भी करेंगे, सूर्य चंद्रमा ये सब भगवान के कैमरे हैं। आप देखिए सूर्य कितना बड़ा कैमरा लगा हुआ है, आप कहीं भी जाओ दिन में हम लोग जब छोटे बच्चे थे हम लोग को बड़ा आश्चर्य होता था, हम ट्रेन में जाते थे सूरज भी साथ साथ में चलता रहता था है ना, हम लोग देखते थे बोलते थे देखो 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 सूरज साथ में चल रहा है, सूरज साथ में नहीं चलता था, हम लोग देखते थे। तो आप यहाँ जाओ, कारोबार में रहो, बम्बई में जाओ, लंदन में जाओ, ऊपर कैमरा लगा ही रहता है राइट, और उसके कैमरे की रेंज कितनी है। हाँ, कोई ऐसे छोटा सा कैमरा नहीं, ऐसे कैमरा बस इतना दिखाई देगा, पीछे खड़े होकर आप कुछ भी कर लो, आप कहीं भी घूमो पूरा कैमरा लगा रहता है। तो सूर्य एक कैमरा, रात में चंद्रमा कैमरा। तो भगवान ने इतने बढ़िया कैमरे लगाए हैं कि 13 कैमरों में सारा कुछ आ जाता है। और सबसे बड़ा कैमरा भगवान ने कहाँ लगाया
है?
परमात्मा अंदर, इधर ही। तो क्योंकि आप जो करने के पहले सोचते हो, जैसे ही सोचते हो कैमरा कैच कर लेता है, हाँ ये करने वाला है। तो इतना बड़ा कैमरा यही लगा दिया है परमात्मा के रूप में। तो अगर हमें ये पता हो तो हम कभी अधर्म नहीं करेंगे। इसीलिए जब भगवान के नाम का भी जप करें तो ये जान लीजिए कि 13 कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप जप कर रहे हो भगवान के नाम का, और वो सारी रिकॉर्डिंग वो भगवान को भेज रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये रिकॉर्डिंग भगवान के पास जानी है और हम लोग जप कर रहे हैं ऐसे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, भगवान देखेंगे रिकॉर्डिंग, वाह 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 कितना बढ़िया भक्त है मेरा, कैसा लगेगा भगवान को। अभी जप करते समय याद रखिए रिकॉर्डिंग हो रही है और वो रिकॉर्डिंग जाएगी भगवान के पास, क्योंकि इन लोगों का काम ही यही है। जो 13 कैमरे हैं इनका सबका कनेक्शन एक कंप्यूटर से है जो गोलोक में लगा हुआ है, और गोलोक में भगवान ऐसे स्क्रीन पर बैठकर देखते रहते हैं सारी दुनिया में क्या हो रहा है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी उन्होंने देखे कैमरा शुरू हो गया, लाइट आ गई है ना, सूर्य का प्रकाश आ गया, कैमरा शुरू हो गया। आप पेड़ के नीचे भी बैठे रहोगे तो भी कैमरा लगेगा, पृथ्वी तो है ही, वायु तो है ही। तो अब भगवान के कैमरे रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हमें जप कैसे करना चाहिए, ये हमने इसलिए बताया कैमरों की बात साक्षी की, कि जान लीजिए कि भगवान देख रहे हैं। आप सोचिए कि आपके पास भगवान आकर खड़े हो जाएं जप के समय सुनने के लिए, तब आपका जप कैसा होगा? तब हमारे राम 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 भगवान बोलेंगे क्या बोल रहे, किसका नाम बोल रहे हो है ना, भगवान पूछेंगे भाई किसको बुला रहे हो, मैं चला जाता हूँ, किसी और को बुला रहे हो लगते, कृष्ण तो नाम ही नहीं है। तो इसीलिए जप करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ जैसे हमने बताई, गुरु से प्रार्थना करनी है ताकि हमें श्रद्धा और अधिकार मिल सके। दूसरी चीज़ हमें सावधानी से जप करना है। जैसे अभी हम लोग जप करने में जो अपराध होते हैं, नाम अपराध, वो पढ़ते हैं ना हम लोग, तो ध्यानपूर्वक जप ना करना ये भी अपराध है। तो सबसे पहली चीज़ जब आप जप करें, अभी जैसे हम लोग बैठेंगे तो एकदम सीधा बैठिएगा, एकदम स्ट्रेट बॉडी को ऐसे रखिए। उससे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि उससे कोई योग साधना हो जाती है, शरीर को एकदम सीधा रखने से मन नियंत्रण में रहता है, ध्यान लगता है। तो ध्यान रखने की आप देखिए जितने भी ध्यान योगी हैं कोई ऐसे नहीं बैठते आराम से एकदम स्ट्रेट। उनका स्ट्रेट क्यों होते हैं, ताकि मन का ध्यान। तो ये इसका कनेक्शन हमारी ये जो पीठ है, ये रीढ़ की हड्डी का कनेक्शन मन से है। तो जैसे हम सीधे बैठते मन भी एकदम सीधा हो जाता है, हाँ चलो तैयार है, हम जब ऐसे बैठते तो मन भी ऐसे हो जाता है ना। तो मन को ऐसे नहीं बिठाना, मन को एकदम मन खड़ा रहना चाहिए, हाँ क्या बोल रहे हो ध्यान से सुनना। तो जब करते समय पहली चीज़ एकदम सीधा बैठिएगा। जो लोग नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए ऊपर भी व्यवस्था है, अगर किनको नीचे बैठने में तकलीफ है तो ऊपर। वैसे ये स्थान बहुत अच्छा है इसीलिए आराम से ध्यान लग सकता है, यहाँ कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ये भी बंद हो गई जो आवाज़ की तो एक चीज़, आप एकदम सीधा बैठिएगा जपा करते समय। अगर आप ऊपर भी बैठ रहे हैं, आपके पाँव में दर्द है, नीचे नहीं बैठ सकते, तो भी पीठ सीधी रखिए। पीठ सीधी रखने से ध्यान लगता है, इसीलिए हमेशा जप के समय पीठ सीधी रखनी चाहिए, ऐसे कभी नहीं बैठना चाहिए, ऐसे करते ही नींद आ जाती है। इसीलिए हाथ दोनों ऐसे, इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं, ऐसे लगा के जब ऐसे किया जाता है तो ये ध्यान मुद्रा। मुद्राओं में बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो ज्ञान मुद्रा हो जाती है, ऐसे किया तो ध्यान मुद्रा कहते हैं। तो कम से कम हाथ सीधे रख के बैठना चाहिए। पहली चीज। दूसरा चीज, जो बोल रहे हैं उसको सुनना चाहिए हर एक शब्द को। जैसे हमने कहा, मान लीजिए कि कृष्ण खड़े हैं, और अगर कृष्ण सुन रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे? तो आपको हर शब्द, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकदम स्पष्ट। हमें केवल इतना ही तेज बोलिए जितना आपको सुनाई दे, बहुत ज़्यादा मतलब कैमरे को सुनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग ज़ोर से बोले तो सूर्य सुन ले, चंद्रमा सुन ले, वो कोई चिंता नहीं। हाँ, आप सुन लीजिए, वही बहुत है, बाकी सूर्य वगैरह अपने आप सुन लेंगे। तो इसीलिए इतना, हाँ ये भी नहीं कि हम इतनी ज़ोर से बोले पास वाला बैठा हुआ परेशान हो जाए, कि मैं अपना जब केवल सुनना चाहिए, दूसरे का नहीं। इसलिए प्रयास मत कीजिए दूसरे, थोड़ा सा धीरे, इतना होना चाहिए कि बस हमें सुनाई दे, सब लोगों को डिस्टर्ब नहीं। तो जो बोल रहे हैं उसको सुनना चाहिए हर एक शब्द। आपका प्रयास यही होना चाहिए, समय लगे कोई बात नहीं, लेकिन हर शब्द को सुनना। और तीसरा, ध्यान। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? पेड़ों पे लगे हुए आम पर नहीं होना चाहिए, ठीक है? कि आप यहाँ बैठे हैं और ऊपर ध्यान करें, वाह वाह इतने बड़े पेड़, बहुत अच्छे। कृपया कोई भी आम तोड़िएगा नहीं, इन लोगों ने बड़ी मेहनत से इतने वृक्षों को बनाया है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि बस जपा होते ही कुछ लोग अंदर चले जाएं, कोई इधर उधर देखे नहीं। तो आम तो बहुत नीचे है, उसको तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं, तो तोड़िएगा नहीं। जिनके पेड़ हैं उन लोगों ने इतनी मेहनत से उसको मेंटेन किया है। यहाँ हम लोग आए हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग यहाँ से जब जाएं तो इनको अच्छा लगना चाहिए। अगली बार कहें कि इस्कॉन कारवार से भक्त आ रहे हैं तो मना नहीं करें, तो जाते समय रूम वगैरह भी ठीक से रखें, ज़्यादा गंदा नहीं करें, और ये सब चीज़ें ना करें कि पेड़ तोड़, पेड़ नहीं अपना आम तोड़ लिया या कुछ गंदगी की। वैसे भी यहाँ पर इस्कॉन के बहुत भक्त आते हैं और ये लोग इस्कॉन को बहुत जल्दी दे दे, इस्कॉन का नाम सुनते ही दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इस्कॉन के भक्त बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, कोई यहाँ गलत काम नहीं करते, गंदगी ज़्यादा नहीं फैलाते, अच्छी तरह से बस अपना कीर्तन भजन करके चले जाते हैं। तो ऐसे ही रहना चाहिए। अगर हम बंदरों की तरह इस पर चढ़कर सब तोड़ने लगे तो फिर अगली बार वो लोग, कोई भी इस्कॉन वाले आएंगे तो नहीं नहीं हमारे सारे पेड़ ख़राब कर दिए। वैसे इच्छा होती है ना आम देखकर, इतने इतने पास में है, तोड़ने की इच्छा हो जाती है। वैसे आप लोग में जब अगर जप करने की किसी की इच्छा हो हनुमान जी का स्मरण करते हुए, तो पेड़ पर चढ़कर बैठकर भी जप कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। स्मरण हनुमान जी का हो तो ठीक है। तो इस तरह से तीन चीज़ें ध्यान रखिए, एकदम सीधे बैठना है, जो बोल रहे हैं उसको सुनना है, और ध्यान आम पे नहीं होना है। ध्यान हमारा भगवान पर होना चाहिए। कभी कभी ध्यान नहीं लगता, मन में कोई बातें आ जाती हैं, अभी कल जाके क्या करना है, परसों क्या करना है, तो उस समय मन को कैसे लाना चाहिए भगवान की ओर? हमें अचानक सोचना चाहिए कि पिछली बार मैं वृंदावन गया था, वृंदावन में राधा श्याम सुंदर के दर्शन किए थे, कृष्ण बलराम का इतना सुंदर ऑल्टर है, और वहाँ पर ऐसे ड्रेसिंग की थी, तुरंत सारा ध्यान वापस आ जाएगा। तो हमें सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण बलराम के सामने बैठा हुआ जप कर रहा हूँ, मैं राधा श्याम सुंदर के सामने बैठे हुए जप कर रहा हूँ, ठीक है? तो सोना नहीं है, आंखें बंद नहीं कीजिए, देख लीजिए 13 के 13 कैमरे आपके ऊपर हैं। एक बार हम लोग कहीं पर गए थे कुछ भक्तों को लेकर, और सब जब जप करने के लिए बैठे तो हम लोगों ने चुपके से चोरी से उनका रिकॉर्डिंग किया था। वैसे आज भी कैमरा है और एक कैमरा हमारे पास है। तो प्रभु जी लाल कपड़ा पहन के ही बैठे हैं, खतरे का सिग्नल। तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर लिया था दूर से, क्योंकि जूम होता है, और फिर बाद में उन्हीं लोगों को दिखाया था, तो बड़ा अच्छा लगा था। कोई ऐसे जब कर रहा था, उन्होंने कैमरा उसके ऊपर ही कैमरा लगा दिया। तो आज भी हमने इनको यही कहा है, जो भी सो रहे हो कैमरा जूम कर देना उनके ऊपर और रिकॉर्डिंग कर लेना। तो जाने से पहले हम लोग रात को बड़े स्क्रीन पर सबके सामने दिखाएंगे कि देखो कैसा जप हो रहा था। नहीं, आप चिंता नहीं कीजिए, इतना नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग तो करेंगे ही, ताकि आपको बाद में दिखा सके कि आप जप कैसे करते हैं। तो इसीलिए तीन चीज़ें करके हम लोग अभी जप प्रारंभ करेंगे। वैसे जैसे हम सब 16 माला प्रयास करते हैं रोज करने का, आज एकादशी है, ज़्यादा भी हो सके तो अच्छा है, लेकिन जब हम वापस भी जाएँ यहाँ से तो हमें जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जप से ही हम भगवान से संबंध में आते हैं, जप से हमारा हृदय शुद्ध होता है, जप करने से हम भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने के योग्य हो जाते हैं। जब तक जप नहीं करते हमें भगवद गीता भागवत कुछ समझ नहीं आएगी, इसीलिए जप करना है ताकि भगवान के कैमरों की रिकॉर्डिंग भगवान तक जा सके और फिर भगवान देखे हाँ ये अच्छा भक्त अच्छा जप कर रहा है, चलो इसको इसके जीवन में जितने कष्ट हैं मैं दूर कर देता हूँ ताकि अच्छी भक्ति कर सके। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है जप के विषय में? एक 5 मिनट अगर किसी के प्रश्न हो तो प्रश्न, अगर जप के केवल, बाकी कोई अभी प्रश्न नहीं, केवल जप के विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो हम लोग जप प्रारंभ करेंगे। हाँ, आँख खुली रखना चाहिए या बंद रखना चाहिए जप के समय? जप के समय कोई ऐसी बात नहीं है, आँख बंद भी कर सकते हैं लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके आप दूसरी दुनिया में चले गए योग निद्रा में और कृष्ण को देखने के अलावा कोई और स्वप्न देख रहे हैं, फिर वो सब ठीक नहीं, इसलिए अच्छा है आँखें खुली रखें। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि आँखें बंद करने से भी नींद नहीं आएगी, कर सकते, कोई ऐसी मनाही नहीं है, ऐसा नियम नहीं है कि आँख खोल कर ही करना है, लेकिन ज़्यादातर भक्तों को कहा जाता है आँखें खोलें, क्योंकि पता नहीं चलता ना आँख खोल के सो रहे हैं या जग रहे हैं, कुछ पता नहीं। जब तक हाँ मुँह चल रहा है तो ठीक बात। और कोई
एक बार इसको डेमोन्स्ट्रेट और करिए कैसे हमारी उंगलियाँ कैसे चलनी चाहिए ताकि हमसे कोई त्रुटि ना हो।
ओके,
अंदर इसके
सो ये आप सबके पास जो माला है उसमें 108 मणि होते हैं, और उसके अलावा ये एक मणि जिसको मेरु मणि कहते हैं या कृष्ण मणि कहते हैं, ये होते हैं। तो हम लोग जब जप प्रारंभ करते हैं तो जप में इस उंगली को स्पर्श नहीं करते, इसीलिए हमारे जप माला से ये बाहर रहती है, ऐसे रहता है उंगली। तो हम लोग अंगूठे से और ये जो बीच की उंगली है इससे जप करते हैं, और जब करने के समय में एक ही मणि को पकड़ना चाहिए उंगली से, ऐसे एक मणि को एक समय में, दिख रहा है आपको, एक को पकड़ना है बस ऐसे। ये जो पहली मणि है बीच की जिसमें ये धागे बंधे होते हैं, इस पर जप नहीं किया जाता है और ना ही इसको पार किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। तो ये मणि है कृष्ण मणि, तो हम पहली उसके बाद से पहली मणि से प्रारंभ करते हैं और ऐसे पकड़ते हैं और आगे जाना है, ऐसे नहीं जाते हैं, उल्टा नहीं जाते हैं, ये उल्टा है, हम लोग आगे जाना है, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, पीछे पीछे नहीं जाना है। तो ऐसे पकड़ के हम लोग सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। कौन सा प्रणाम मंत्र है?
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ये जो मंत्र है, ये हरे कृष्ण मंत्र से 1000 गुना ज़्यादा लाभदायक है, 1000 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा प्रभावी है। तो फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र क्यों कहते हैं? फिर यही करना चाहिए ना पूरा, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण, जबकि प्रभुपाद ने कहा कि हाँ ये 1000 गुना ज़्यादा लाभदायक है। तो क्यों नहीं करते हम लोग, कोई बताएं कारण? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने, जिनका ये मंत्र है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, उन्होंने हमें हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए कहा, इसलिए हम महामंत्र का जप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे नामों का उच्चारण किया अपने जीवन में, जब वो बहुत भावविभोर हो जाते थे तो गोविंद दामोदर माधवेती ऐसे बोलते थे, बहुत सारे नामों का उच्चारण किया, लेकिन हमारे लिए उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिए, तो इसलिए हमें महामंत्र का जप करना चाहिए, स्वयं भगवान ने दिया। तो इसलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। फिर इस पे हमें पहले मणि पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर उसके बाद दूसरी मणि पर जाना, फिर वही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर तीसरी मणि, ऐसे करते 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 पूरा माला, लेकिन एक मणि पर एक मंत्र बोलकर फिर आगे जाना है, आधा मंत्र बोलकर नेक्स्ट मणि पर भागा दौड़ी नहीं करनी है, कोई जल्दी नहीं है हमें, हम लोग रात तक यहीं पर हैं, कल तक यहीं पर हैं। फिर ऐसे जब पूरी माला यहाँ तक हो जाएगी, आखिरी में पहुँचेंगे आप आखिरी इस पे मणि पे, फिर उस पे भी जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके बाद आगे नहीं जाना है, इसको क्रॉस नहीं करना है, इसके बाद माला को घुमा लेना, इसके बाद माला को बस ऐसे सरलता से घुमा लेना, ये घूम गई, फिर उल्टा चालू करना वापस वहाँ। फिर ऐसे जब यहाँ तक आ जाएंगे करते हुए, तो फिर इसको क्रॉस नहीं करना, फिर खाली माला को बस घुमा लेना यहाँ से, बहुत सरल। ठीक है, सबको समझ में आ गया? हाँ,
प्रेयर में करना है या फिर
प्रेयर में, मतलब हाँ, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी आप छोड़ सकते हो माला पूरी करने के बाद, फिर आगे से शुरू कर सकते, तीन माला कर ली, चौथे से शुरू कर लिए, फिर पांचवे से शुरू कर लिए, उसमें कोई नियम। हाँ, लेकिन अगर आधी माला हुई और एकदम इमरजेंसी किसी ने बुला लिया कुछ है, तो वो काउंट नहीं करना चाहिए कि ढाई माला हो गई थी अब बीच में कहीं तो ढूंढे, हाँ यहाँ से शुरू करें, नहीं वो छोड़ देना है। हमें नंबर की ज़्यादा चिंता नहीं है, हमें चिंता है भगवान के नाम लेने की। तो अगर आधा माला ज़्यादा हो गई तो क्या गलती है? कई कई लोग होते हैं वो आधा पकड़ के उसको ऐसे ही रख देते हैं, फिर बातचीत करके फिर वहीं से शुरू करते हैं, कोई जरूरत ना आधा माला एक्स्ट्रा करने में क्या, फिर से माला शुरू कर दो, उसको काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न जप के विषय में? और जप में सोना नहीं चाहिए बिल्कुल, रात को आप लोग सो चुके हैं ना, सबको नींद अच्छी तरह से आई रात को?
हाँ।
किसी को तकलीफ हुई?
ठंडी
ज्यादा है यहाँ तो, अच्छा लगा ना, कारवार में बहुत गर्मी है, पंखा बंद करके सोया। तो आप सबको नींद में तकलीफ नहीं हुई ना, तो अभी नींद बिल्कुल नहीं कीजिएगा, याद रखिए 13 कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, आंखें खोल के जप करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर सर्कल में बैठेंगे, माता जी के लिए उधर थोड़ा व्यवस्था कर दो, जो आप लोग थोड़ा उठ जाइए तो आपके लिए वहाँ पर पीछे डाल देंगे, तो वहाँ भी आप सर्कल में बैठ कर कीजिएगा। सर्कल में बैठने से एक लाभ होता है कि अगर कोई सो रहा है तो उसको दूसरा उठा सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बैठे। हरे कृष्ण।